Today we will discuss the case of R.D. Saxena versus Balram Prasad Sharma, 2007 SCC 264. R.D. Saxena versus Balram Prasad Sharma. A very important question was posed in this appeal, which has great importance for the members of the legal profession. It is important for you as well, being a law student, as you might face such situation during your practice days. Equally, it is important for the professionals who have started practicing as an advocate in the courts. Not only for the advocates, it is a very important decision for all the professionals such as CAs, CS, doctors, etc., who are governed by their respective statutory bodies. And the issue or the question that is to be decided in this case is whether an advocate can retain the files after the client terminated his engagement on the strength of any claim for unpaid remuneration or fees. It is also to be decided, importantly, whether an advocate has lien on the files entrusted to him by the client. एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस केस के अंदर में अराइज होता है लीगल प्रोफेशनल्स के लिए. ये आज आपके लिए ज़रूरी हो सकता है समझना, क्योंकि आप लोग भी प्रैक्टिस में आएंगे और जो लोग प्रैक्टिस में आ चुके हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और ना सिर्फ ये एडवोकेट्स के लिए बल्कि सभी प्रोफेशनल्स के लिए भी ये केस इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये इस केस का जो इम्पैक्ट है वो सभी के ऊपर में आता है. क्वेश्चन जो इशू जो इसके अंदर में राइज होता है वो ये है कि क्या अगर आपकी फीस आपको नहीं मिली है या अनपेड है, अभी कुछ हिस्सा उसका नहीं मिल पाया आपका रेमुनरेशन का, तो क्या इस क्लेम के बेसिस पे, इसकी स्ट्रेंथ के बेसिस पे आप अपने क्लाइंट की फाइल को अपने पास रख सकते हैं? क्या आपका उस फाइल के ऊपर लियन क्रिएट होता है या नहीं होता है? दिस इज टू बी डिसाइडेड इन दिस पर्टिकुलर केस. Let us see. The first para. The main issue posed in this appeal has sequential importance for members of the legal profession. The issue is, has the advocate a lien for his fee on the litigation papers entrusted to him by his client? In this case, the Bar Council of India, without deciding the above crucial issue, has chosen to impose punishment on a delinquent advocate, debarring him from practicing for a period of 18 months and a fine of ₹1,000. The advocate concerned was further directed to return all the case bundles which he got from his respondent client without any delay. This appeal is filed by the said advocate under Section 38 of the Advocates Act 1961. We know that ki agar hum Bar Council of India ke decision se संतुष्ट नहीं है तो हम सेक्शन 38 एडवोकेट्स एक्ट के अंदर हम सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल कर सकते हैं. यहां पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एडवोकेट के अगेंस्ट में डिसीजन दिया और 18 मंथ्स के लिए उनको प्रैक्टिस से डीबार किया और ₹1,000 का फाइन इम्पोज किया. बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये इशू डिसाइड नहीं किया कि क्या एडवोकेट का क्लाइंट की केस बंडल के ऊपर में या पेपर्स के ऊपर में, जो लिटिगेंट पेपर्स हम कहेंगे, उसके ऊपर उसका लियन क्रिएट होता है या नहीं होता है. सेकंड पैरा, द अपीलेंट नाउ ए सेप्टाजुनेरियन हैज बीन प्रैक्टिसिंग एज एन एडवोकेट. सेप्टाजुनेरियन मींस ए पर्सन हु इज बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 70 to 79. नाउ इज ऑफ दिस एज ग्रुप. द अपीलेंट नाउ ए सेप्टाजुनेरियन has been practicing as an advocate mostly in the courts at Bhopal after enrolling him as a legal practitioner with the State Bar Council of Madhya Pradesh. According to him, he was appointed as legal advisor to Madhya Pradesh State Cooperative Bank, and the bank continued to retain him in the capacity during the succeeding years. He was also engaged by the said bank to conduct cases in which the bank was a party. However, the said retainership did not last long. On 17/7/93, the bank terminated the retainership of the appellant and requested him to return all the case files related to the bank. Instead of returning the files, the appellant forwarded a consolidated bill of the bank showing an amount of ₹97,100 as the balance payable by the bank towards the legal remuneration to which he is entitled. He informed the bank that the files would be returned only after settling his dues. Appellant advocated, he was on the panel of the bank, Cooperative Bank, Madhya Pradesh State Cooperative Bank. बैंक ने उसकी कई सालों तक रिटेनरशिप उसको रखी, लेकिन ये रिटेनरशिप ज़्यादा लंबी नहीं चली. 93 के अंदर में बैंक ने रिटेनरशिप को टर्मिनेट किया और अपीलांट से रिक्वेस्ट किया कि आप जितने भी आपके पास केस फाइल्स हैं बैंक से रिलेटेड, आप उन्हें रिटर्न कर दीजिए. बजाय रिटर्न करने के अपीलांट ने एक बिल फॉरवर्ड किया बैंक को ₹97,100 का, और ये डिमांड की कि आप ये हमें आप हमें ये रेमुनरेशन जो है ये आप पे करिए. और उसने बैंक को इन्फॉर्म किया कि फाइल्स बिल की अमाउंट मिलने के बाद में, ड्यूज को सेटल हो जाने के बाद ही वापस की जाएंगी. दिस इज द बेसिक इशू कि क्या फीस लिए बिना आप उस केस फाइल्स को रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं. पैरा 3, कॉरेस्पॉन्डेंस वेंट ऑन बिटवीन द अपीलांट एंड द बैंक रिगार्डिंग द अमाउंट इफ एनी payable to the appellant as the balance due to him. The respondent bank disclaimed any liability outstanding from them to the appellant. The dispute remained unresolved and the case bundles never passed from the appellant's hand. As the cases were pending, the bank was anxious to have the files for continuing the proceedings before the court's tribunals concerned. At the same time, the bank was not disposed to capitulate to the terms dictated by the appellant, which they regarded as grossly unreasonable. A complaint was hence filed by the managing director of the bank before the State Bar Council Madhya Pradesh in 1994. It was alleged in the complaint that the appellant is guilty of professional misconduct by not returning the files to his client. Respondent bank ne koi bhi zimmedari nahi li. They disclaimed any liability ki hamare paas aapki koi bhi outstanding due nahi hai. Dispute solved nahi hui. और एडवोकेट ने वो जो फाइल बंडल था वो भी अपीलेंट्स के हैंड में वापस पास नहीं किया. केस पेंडिंग रहे और बैंक वाज वेरी एंग्शियस कि कोर्ट्स में प्रोसीडिंग कंटिन्यूड है और हमारे पास अपने कोई केस के फाइल पेपर्स नहीं है. इसलिए बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर ने कंप्लेंट फाइल की बिफोर द स्टेट बार काउंसिल मध्य प्रदेश. पैरा 4, इन द रिप्लाई विच द अपीलेंट सबमिटेड द बार काउंसिल, he admitted that the files were not returned but claimed that he has a right to retain such files by exercising his right of lien and offered to return the file as soon as payment is made to him. Appellant, that is the advocate, usne bank ke bar counsel ke samne admit kiya ki haan usne file ko returns nahi kiya hai, lekin sath ke sath usne claim kiya ki uska right to retain hai to the files aur uske paas he has right of lien over that files, or as soon as he will get his payment, he will return the files. Para 5, the complaint was then forwarded to the disciplinary committee of the State Bar Council. The State Bar Council failed to dispose of the complaint even after the expiry of 1 year. So under section 36B of the Advocates Act, the proceedings stood transferred to the State Bar Council of India. We know that ki section 35 ke under mein कोई भी कंप्लेंट रिसीव होगी तो दैट विल बी फॉरवर्डेड टू द डिसिप्लिनरी कमेटी ऑफ द स्टेट बार काउंसिल. और अगर एक साल के अंदर अंदर में वो उसको डिस्प्यूट को रिजॉल्व नहीं करेंगे तो इट विल बी स्टूड ट्रांसफर टू द बार काउंसिल ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 36B. सो नाउ दिस प्रोसीडिंग स्टूड ट्रांसफर टू द बार काउंसिल ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 36B. आफ्टर होल्डिंग इंक्वायरी द डिसिप्लिनरी कमेटी ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया reached the conclusion that the appellant is guilty of professional misconduct. The disciplinary committee has stated the following in the impugned order. On the basis of the complaint as well as the documents available on record, we are of the opinion that the respondent is guilty of professional misconduct and thereby he is liable for punishment. The complainant is a public institution. It was the duty of the respondent to return the briefs to the bank and also to appear before the committee to revert his allegations made in application dated 95. No such attempt was made by him. Bar Council of India ne conclusion diya ki appellant is guilty of professional misconduct और उन्होंने ये कमेंट दिया कि हमारे ओपिनियन में रिस्पोंडेंट प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का गिल्टी है और उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, और उसकी रिस्पोंडेंट की ड्यूटी थी टू रिटर्न द ब्रीफ्स टू द बैंक. पैरा 6. इन दिस अपील लर्नर्ड काउंसिल फॉर द पीलांट कंटेंडेड दैट द फेलियर ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया टू कंसिडर द सिंगुलर डिफेंस सेट अप बाय द अपीलांट, दैट इज ही हैज ए लियन ओवर द फाइल्स फॉर हिज अनपेड फी ड्यू टू हिम हैज रिजल्टेड इन मिसकैरेज ऑफ जस्टिस. द बैंक कंटेंडेड दैट देर वॉज नो फी पेएबल टू द अपीलांट एंड द अमाउंट शोन बाय हिम वॉज ऑन अकाउंट ऑफ इन्फ्लेटिंग द फी. ऑल्टरनेटिवली द रिस्पोंडेंट कंटेंडेड दैट एन एडवोकेट कैन नॉट रिटेन द फाइल्स आफ्टर द क्लाइंट टर्मिनेटेड इज एंगेजमेंट एंड देर इज नो लियन ऑन सच फाइल्स. अपील के अंदर में काउंसिल के बिहाव पर यह कंटेंशन दी गई कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस पॉइंट को कंसिडर नहीं किया कि जब तक मेरी अनपेड पी फीस जब तक मेरी तरफ ड्यू है तब तक आई हैव ए लियन ओवर द फाइल्स एंड नाउ इट हैज रिजल्टेड इन मिसकैरेज ऑफ जस्टिस. बैंक ने ये कंटेंशन दी कि कोई फीस पेबल नहीं अपीलेंट की तरफ में, और अगर है भी तो फिर भी अपीलेंट दैट इज द एडवोकेट ही कैन नॉट रिटेन द फाइल्स. वो फाइल्स को अपने पास नहीं रख सकते जब क्लाइंट ने एक बार उसको उसकी सर्विसेज के लिए टर्मिनेट कर दिया गया है, देन देर इज नो लियन ऑन सच फाइल्स. पैराग्राफ 7. वी वुड फर्स्ट एग्जामिन वेदर एन एडवोकेट हैज लियन ऑन द फाइल्स एंट्रस्टेड टू हिम बाय द क्लाइंट. Learned counsel for the appellant endeavored to base his contentions on section 171 of the Indian Contract Act, which reads thus. यहाँ पर एडवोकेट की तरफ से सेक्शन 171 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सहारा लिया गया, विच रीड्स एज. व्हाट इज सेक्शन 171? लेट अस सी. बैंकर्स, फैक्टर्स, स्वॉर्फिंगर्स, अटॉर्नीज ऑफ ए हाई कोर्ट, सी अटॉर्नीज ऑफ ए हाई कोर्ट एंड पॉलिसी ब्रेकर ब्रोकर्स में In the absence of a contract to the contrary, retain as a security for a general balance of account any goods bailed to them, but no other persons have a right to retain goods bailed to them unless there is an express contract. Section 177 आपका कहता है कि bankers हैं या आपके attorneys हैं high court के, वो अगर उनका कोई balance due है, they can retain द गुड्स बेल्ड टू दैम. अगर कोई भी गुड्स उनको बेल किया गया है, कोई भी सामान अगर उनको दिया गया है, तो दे हैव राइट टू रिटेन इट एज ए सिक्योरिटी. लेकिन कोई और पर्सन ऐसा नहीं कर सकता जब तक कि कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ना हो. नाउ लेट अस सी पैरा 8 एंड 9. दीज आर इंपॉर्टेंट विच विल डिसाइड वॉट इज दिस सेक्शन 171. पैरा 8. फाइल्स कंटेनिंग कॉपीज ऑफ द रिकॉर्ड्स कैन नॉट बी इक्वेटेड विद द गुड्स रेफर टू इन द सेक्शन. अभी सेक्शन 171 में हमने पढ़ा कि बैंकर्स और अटॉर्नीज किसी भी सामान को रख सकते हैं एज ए सिक्योरिटी अगर उनका कोई भी ड्यू है. तो यहां पर उन्होंने कहा कि जो फाइल्स हैं, जो कॉपीज हैं, यू कैन नॉट इक्वेट विद द गुड्स रेफर टू इन दिस सेक्शन. द एडवोकेट कीपिंग द फाइल्स कैन नॉट अमाउंट टू गुड्स बेल्ट. द वर्ड बेलमेंट इज डिफाइंड इन सेक्शन 148 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एज अ डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पज upon a contract that they shall be returned or otherwise disposed of according to the directions of the person delivering them when the purpose is accomplished. In the case of litigation papers in the hands of an advocate, there is neither delivery of goods nor any contract that they shall be returned or otherwise disposed of. देखिए सेक्शन 148 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को जो हम देखेंगे कि बेलमेंट क्या होता है. बेलमेंट में ये होता है कि कोई भी पर्सन जब किसी को अपना कोई सामान डिलीवर करता है कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद में, तो क्लियरली इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि वो किस तरीके से उसको वापस दिया जाएंगे या उस प्रॉपर्टी को आप डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं किस तरीके से. लेकिन जहां पर लिटिगेशन पेपर्स की बात है, तो ना तो एडवोकेट को कोई सामान दिया गया है, दैट इज द केस फाइल्स, दीज आर नॉट द गुड्स, और ना ही कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है कि वो उनको वापस दिया जाएगा या किस तरीके से आप उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं. पैरा 9. Thus, understood goods to fall within the purview of section 171 of the Contract Act should have marketability and the person to whom they are bailed should be in a position to dispose of them in consideration of money. In other words, the goods referred to in section 171 of the Contract Acts are saleable goods. There is no scope for converting the case files into money, nor can they be sold to any third party. Hence, the reliance placed on Section 171 of the Contract Act has no merit. इसलिए सेक्शन 171 यहां पर अप्लाई नहीं होगी. केस फाइल जो है दैट इज नॉट द गुड्स और द सामान. नाउ कम टू पैरा 10. इन इंग्लैंड द सॉलिसिटर हैड ए राइट टू रिटेन एनी डीड पेपर और चेटल विच हैज कम इन टू हिज पोजेशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट. इंग्लैंड में ये पोजिशन थी आपकी. पैरा 12 सेज विच विल मेक इट मोर क्लियर. देखिए 1961 एडवोकेट्स एक्ट जब आया उससे पहले वीवर गवर्न्ड बाय द इंडियन बार काउंसिल एक्ट 1926, उसके अंदर में ये पोजीशन थी. लेकिन 1961 में जब आपका एडवोकेट्स एक्ट आया तब पोजीशन डिफरेंट थी. लेट अस सी पैरा 12 व्हाट इट सेज. आफ्टर इंडिपेंडेंस द पोजीशन वुड हैव कंटिन्यूड अंटिल द इनएक्टमेंट ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट 1961 विच इज रिपेल्ड ए होस्ट ऑफ इनएक्टमेंट्स इंक्लूडिंग द इंडियन बार काउंसिल एक्ट 1926. व्हेन द न्यू बार काउंसिल ऑफ इंडिया came into existence, it framed rules called the Bar Council of India rules. Such rules contained provisions specifically prohibiting an advocate from adjusting the fee payable to him by a client against his own personal liability to the client. This is rule 23. Independence ke baad mein Advocates Act aaya aur kafi sare enactments unhone repel kiye jisme se Indian Bar Council एक्ट 1926 भी उन्होंने रिपेल किया और नए बार एडवोकेट्स एक्ट ने कुछ रूल्स फ्रेम किए जिसमें रूल 23 ये कहता है कि आप अपनी फीस को एडजस्ट करने के लिए ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकते. एज ए रूल एन एडवोकेट शैल नॉट डू एनीथिंग वेयर बाय ही अब्यूजेस और टेक एडवांटेजेस ऑफ द कॉन्फिडेंस रिपोज्ड इन हिम बाय हिज क्लाइंट. रूल 24. इन दिस कॉन्टेक्स्ट A reference can be made to rules 28 and 29. आप rule 23, 24, 28 and 29 को आप read out करेंगे. Para 13. Thus, even after providing a right of for an advocate to deduct the fees out of any money of the client remaining in his hand at the termination of the proceeding for which the advocate was engaged, it is important to notice that no lien is provided on the litigation files kept with him. In the conditions prevailing in India, with lots of illiterate people among the litigant public, it may not be advisable also to permit the counsel to retain the case bundle for the fees claimed by him. Any such lien, if permitted, would become susceptible to great abuses and exploitation. Bar Council of India rules ke andar mein right hai कि एडवोकेट के पास के हाथ में जो भी अमाउंट पेंडिंग है वो लास्ट के अंदर में उसको एडजस्ट कर सकता है जब प्रोसीडिंग टर्मिनेट होंगी. अपनी जो भी फीस है या जो कुछ भी ड्यूज पेंडिंग है उसको एडजस्ट करके बाकी के पैसे वो वापस क्लाइंट को रिटर्न कर सकता है. लेकिन साथ के साथ ये भी इंपॉर्टेंटली नोटिस करने की बात है कि कहीं भी बार काउंसिल के रूल्स में नहीं लिखा कि एडवोकेट हैज राइट टू लियन ओवर द फाइल्स केप्ट विद हिम. आपका लियन क्रिएट नहीं होता है फाइल्स के ऊपर में. और इंडिया में जो कंडीशन प्रिवेल करती है बहुत सारे इलिटरेट पीपल हैं यहां पर. इट इज एडवाइजेबल कि काउंसिल को कोई राइट नहीं है टू रिटेन द केस बंडल फॉर द फीस क्लेम्ड बाय हिम. पैरा 14. देयर इज येट अनदर रीजन विच डिसवेड्स अस फ्रॉम गिविंग अप्रूवल टू सच लीन. वी आर श्योर दैट नोबडी वुड डिस्प्यूट द प्रोपोजिशन दैट द कॉज इन अ कोर्ट ट्रिब्यूनल इज फार मोर इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द कंसर्न्ड दैट द राइट of the legal practitioner for his remuneration in respect of the services rendered for espousing the cause on behalf of the litigant. सबसे important चीज ये है कि कोई भी चीज को dispute नहीं कर सकता कि जो party है उसका सबसे importantly concerned होता है अपने case के लिए, ना कि legal practitioner का important है right कि उसको remuneration मिले उसके behalf पे. If a need arises for the litigant to change his counsel pendentelite, that which is more important should have its even courses flow unimpeded. ये right important है कि कभी भी litigant चाहे तो अपने counsel को change कर सकता है pendentelite, means during the pendency of the case, कभी भी आप अपने advocate को change कर सकते हैं. और जो course of justice है, that should flow unimpeded. Retention of records for the unpaid remuneration of the advocate would impede such course and the cause pending judicial disposal would be badly impaired. अगर advocate उस records को retain कर लेगा तो फिर that course would be impeded. If a medical practitioner, see last lines of this para 14 is for all the practitioners basically, professionals. If a medical practitioner is allowed a legal right to withhold the papers relating to the treatment of his patient, which he thus far administered to him for securing the unpaid bill, that would lead to dangerous consequences for the uncured patient who is wanting to change his doctor. Perhaps the said illustration may be an overstatement as a necessary corollary for approving the lien claimed by the legal practitioner. Yet, the illustration is not too far-fetched. These last lines are important. This is for all the professionals. No professional can be given the right to withhold the returnable records relating to the work done by him with his client's matter on the strength of any claim for unpaid remuneration. The alternative is that the professional concerned can resort to other legal remedies for such unpaid remuneration. Last lines के अंदर में पैरा 14 में बहुत हद तक position clear हो जाती है कि doctors को भी allowed नहीं है कि अगर कोई आपका patient ठीक नहीं है तो उसके record को अपने कब्जे में रखें. उन्होंने last lines के अंदर में ये कहा है कि किसी भी professional के पास में कोई भी right नहीं है कि आप उसकी किसी भी ऐसा जो आपने किसी के लिए काम करके दिया है उसके files को, उसके papers को, उसके records को आप retain कर सकें अनपेड रेमुनरेशन के लिए. अगर आपकी फीस नहीं दी गई है तो इट डजंट मींस कि आप उनके पेपर्स को, रिकॉर्ड्स को अपने पास में रख सकते हैं. नाउ व्हाट इज द अल्टरनेटिव रेमेडी? तो फिर वो लोग क्या करेंगे प्रोफेशनल अगर उनकी फीस नहीं आई है? द अल्टरनेटिव रेमेडी इज दैट द प्रोफेशनल कैन रिसोर्ट टू अदर लीगल रेमेडीज फॉर सच अनपेड रेमुनरेशन. आप दूसरी लीगल रेमेडीज को अडॉप्ट कर सकते हैं. That is to say, you can file, you can give a legal notice, you can also file a suit for recovery also, right? तो इस तरह की legal remedies को आप आगे resort कर सकते हैं. Para 15, a litigant must have the freedom to change his advocate when he feels that the advocate engaged by him is not capable of espousing his cause efficiently, or that his conduct is prejudicial to the interest involved in the less or for any other person. For whatever reason, if a client does not want to continue the engagement of a particular advocate, it would be a professional requirement consistent with the dignity of the profession that he should return the brief to the client. It is time to hold that such obligation is not only a legal duty but a moral imperative. This is the observation made by the court ki अगर लिटिगेंट अपने एडवोकेट को चेंज करना चाहता है तो ही हैज ए फ्रीडम फॉर दैट. और मान लीजिए किसी भी रीजन से अगर उसे लगता है कि मेरा एडवोकेट मेरे इंटरेस्ट्स को कैपेबल नहीं है टू सिक्योर इट, या फॉर वट एवर रीजन अगर क्लाइंट आपके साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहता है, तो आपकी ये प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है कि आप उसके ब्रीफ को रिटर्न कर दें. एंड इट इज नॉट ओनली योर लीगल ड्यूटी बट इट इज ए मॉरल इंपेरेटिव ऑल्सो. पैरा 16, in civil cases, the appointment of an advocate by a party would be deemed to be in force until it is determined with the leave of the court. This is the rule under CPC. In criminal cases, every person accused of an offence has the right to consult and be defended by a legal practitioner of his choice, which is now made a fundamental right under Article 22(1) of the Constitution. The word of his choice in Article 22(1) indicates that the right of the accused to change an advocate whom he once engaged in the same case cannot be whittled down by that advocate by withholding the case bundle on the premise that he has to get the fees for the services already rendered to the client. Article 22(1) of the Constitution, wo bhi ye baat kehta hai ki every person has right to be defended by a legal practitioner of his choice, you can say. तो जिस समय क्लाइंट आपको चाहे अपॉइंट कर सकता है, और चाहे तो अगर ही इज नॉट सेटिस्फाइड ही कैन चेंज हिज एडवोकेट हिज काउंसिल एंड कैन एंगेज एनी अदर एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस. पैरा 17, इफ ए पार्टी टर्मिनेट्स द एंगेजमेंट ऑफ एन एडवोकेट बिफोर द कल्मिनेशन ऑफ द प्रोसीडिंग्स, दैट पार्टी मस्ट हैव द एंटायर फाइल विद हिम टू एंगेज अनदर एडवोकेट. अगर कोई पार्टी आपकी एंगेजमेंट को टर्मिनेट करना चाहती है प्रोसीडिंग से खत्म होने से पहले, तो आप उस पार्टी को सारी की सारी फाइल्स जो हैं वो उसको दे देंगे, सो दैट ही मे एंगेज अनदर एडवोकेट. बट इफ द एडवोकेट हु इज चेंज्ड मिड वे अडॉप्ट्स द स्टैंड दैट ही वुड नॉट रिटर्न द फाइल अंटिल द फीस क्लेम्ड बाय हिम आर पेड, द सिचुएशंस परहैप्स मे टर्न टू डेंजरस प्रोपोजिशंस. There may be cases when a party has no resources to pay the huge amount claimed by the advocate as his remuneration. A party in a litigation may have a version that he has already paid the litigation fees to the advocate. At any rate, if the litigation is pending, see these last lines are very important of para 17. At any rate, किसी भी कीमत पे अगर litigation pending है, at any rate if the litigation is pending, the party has the right to get the papers from the advocate whom he has changed so that the new counsel can be briefed by him effectively. In either case, it is impermissible for the erstwhile counsel to retain the case bundle on the premise that the fees were yet to be paid. किसी भी situation में, चाहे आपकी fees मिली है नहीं मिली है, चाहे पार्टी कहे कि वो आपकी जायज फीस को आपको सौंप चुकी है, किसी भी सिचुएशन के अंदर में आप फाइल को रिटेन नहीं कर सकते हैं, चाहे फीस आपकी पेड है या अनपेड है, या पूरा पार्ट आपको पे किया गया है या नहीं किया गया. द पार्टी हैज द राइट टू गेट द पेपर्स फ्रॉम द एडवोकेट हुम ही हैज चेंज्ड. पैरा 18. Even if there is no lien on the litigation papers of his client, an advocate is not without remedies to realize the fees which he is legitimately entitled to. But if he has a duty to return the files to his client on being discharged, the litigant too has a right to have the files returned to him, more so when the remaining part of the list has to be fought in the court. This right of the litigant is to be read as the corresponding counterpart of the professional's duty of the एडवोकेट. बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर में कि एडवोकेट के पास में बहुत सारी रेमेडीज हैं जिस तरीके से अपनी फीस को रिलाइज करवा सकता है, और उसकी ये ड्यूटी है टू रिटर्न द फाइल्स टू हिज क्लाइंट. ना सिर्फ ये उसकी ड्यूटी है बल्कि ये लिटिगेंट का राइट भी है कि वो आपसे उन पेपर्स को वापिस ले सके. पैरा 19. Misconduct envisaged in section 35 of the Advocates Act is not defined. Now we will see whether it is a professional misconduct or not. Misconduct envisaged in section 35 of the Advocates is not defined. The section uses the expression misconduct, professional or otherwise. The word misconduct is a relative term. It has to be considered with reference to the subject matter and the context wherein such terms occurs. It literally means, what is the meaning of the misconduct? It literally means wrong conduct or improper conduct. Now, let us see what has been defined in para 20. Let us see what is defined in Corpus Juris Kingdom. It contains the following passage that what is professional misconduct? Professional misconduct may consist in betraying the confidence of a client in attempting by any means to practice a fraud or impose on or deceive the court or the adverse party of his counsel, and in fact in any conduct which tends to bring reproach on the legal profession or to alienate the favorable opinion which the public should entertain concerning it. This is the definition which has been given in the Corpus Juris Kingdom, that what is professional misconduct. Professional 23. Now the decisions are given. We therefore hold that the refusal to return the files to the client when he demanded the same amounted to misconduct under section 35 of the act. Hence the appealant in the present case is liable to punishment for such misconduct. इसीलिए यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि अगर आप फाइल्स को रिटर्न नहीं करते हैं अपने क्लाइंट की, अगर वो डिमांड करता है, then it amounts to misconduct under section 35. इसलिए यहां पर इस सिचुएशन में अपीलेंट इज लायबल फॉर पनिशमेंट फॉर सच मिसकंडक्ट. पैरा 24. हाउएवर रिगार्डिंग द क्वांटम ऑफ पनिशमेंट वी आर डिस्पोज्ड टू टेक इनटू अकाउंट टू ब्रॉड एस्पेक्ट्स. यहां पर उस एडवोकेट को पनिशमेंट से रिलेटेड यहां पर बात की गई है. व्हाट अबाउट द क्वांटम ऑफ पनिशमेंट? दिस कोर्ट हैज नॉट प्रोनाउंस्ड सो फार ऑन द क्वेश्चन वेदर द एडवोकेट हैज ए लियन ऑन द फाइल्स फॉर हिज फीस. सेकेंडली, the appellant would have bona fide believed in the light of decisions of certain high courts that it did have a lien. दो सिचुएशंस में हाईकोर्ट ने डिसीजन नहीं दिया कि क्या एडवोकेट का फाइल्स के ऊपर में लियन है या नहीं है इफ द फीस इज नॉट पेड. सेकेंडली यहां पर उन्होंने ये नहीं टेस्ट किया कि अपीलेंट की बोनाफाइड बिलीव थी या नहीं थी कि ही हैड ए लियन ओवर द फाइल्स. हो सकता है एडवोकेट ने यह सोचा हो कि उसका इस फाइल के ऊपर में लियन है अगर उसकी फीस को पे नहीं किया गया. तो वॉट वॉज द इंटेंशन ऑफ द एडवोकेट, दैट इज टू बी सीन कि उसका बोनाफाइड बिलीव था या कोई मेलाफाइड इंटेंशन थी इसमें. इन सच सर्कमस्टांसेस इट इज नॉट नेसेसरी टू इन्फ्लिक्ट ए हार्श पनिशमेंट ऑन द अपीलांट. ए रेप्रीमांड वुड बी सफिशियंट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस ऑन द स्पेशल फैक्ट्स ऑफ दिस केस. इसलिए सिचुएशन में जब ये नहीं मालूम कि एडवोकेट की क्या बिलीफ थी सिचुएशन में, वेदर ही हैज ए बोनाफाइड बिलीव और नॉट, तो इतनी हार्श पनिशमेंट जो उसके ऊपर इंपोज की गई है दैट इज नॉट नेसेसरी. ए रेप्रीमांड वुड बी sufficient. Reprimand means to condemn the work done by the advocate. जिन्हें हम कड़ी भतर्सना कहते हैं, निंदा कहते हैं, that is sufficient in the interest of justice on the special facts of this case. Para 25, see this is very important. This says that this decision should not be counted as precedent. इसको इस केस को आप आगे फॉलो नहीं करें. It depends upon the situations. We therefore alter the punishment to one of reprimanding the appellant. However, we make it clear that if any advocate commits this type of professional misconduct in future, he would be liable to such quantum of punishment as the bar council will determine. And the lesser punishment imposed now need not now to be counted as precedent. Future ke andar mein bhi says ki aap is punishment ko precedent count na kare, aur jo bhi पनिशमेंट इंपोज की जाएगी बार काउंसिल ऑफ इंडिया से दैट विल बी दैट कैन दैट विल एग्जिस्ट एट दैट टाइम. राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस केस. इफ वे समराइज दिस केस इनटू वन और टू लाइंस देन आई कैन से दैट देर आर टू पॉइंट्स दैट इज टू बी केप्ट इनटू माइंड. फर्स्ट इज एन एडवोकेट cannot retain the files after the client terminated his engagement, and that most importantly, and that there is no lien on such files even when the fees is unpaid or unsettled. Second point is no professional. When I say no professional, it includes all the professionals, advocates, doctors, CAs, etc. No professional can be given the right to withhold the records, files on the strength of any claim for unpaid remuneration. कोई भी professional अधिकार नहीं रखता कि वो किसी भी तरह का भी record, fee, file अपने पास में retain करे जो उसके client ने उसको दी थी अगर आपकी fees को settle नहीं किया गया और आपका उस file के ऊपर में, record के ऊपर में कोई भी lien create नहीं होता है, कोई भी कब्जा आपका उसके ऊपर क्रिएट नहीं होता है. फिर इसके लिए आप क्या करेंगे, द ऑल्टरनेटिव इज दैट द प्रोफेशनल कंसर्न्ड कैन रिसोर्ट टू अदर लीगल रेमेडीज फॉर सच अनपेड रेमुनरेशन. अगर आपका रेमुनरेशन आपको नहीं मिला है पूरा, अगर आप क्लेम करते हैं किसी चीज के लिए, तो आप फाइल्स को रिटेन नहीं कर सकते हैं, बल्कि दूसरे कानूनी उपचार, दूसरी लीगल रेमेडीज को आप रिसोर्ट कर सकते हैं, उनका सहारा ले सकते हैं. Like suit for recovery or issuing a notice to the concerned party. That's it. Thank you.